अरमान ने आस्था के चेहरे के पास झुककर बहुत धीमी आवाज में कहा, जो सिर्फ आस्था को सुनाई दी। तुमने बहुत बहादुरी दिखाई आफत, अगर तुम्हें जरा भी खरोंच आती तो मैं उस डाक विला को राख कर देता। ये सुनकर एक पल के लिए आस्था थोड़ा सा घबरा गई थी, लेकिन उसने अपने चेहरे को थोड़ा सा शांत किया और फिर आस्था ने मुस्कुराते हुए उसके सीने पर हाथ रखा। मुझे कुछ नहीं हुआ अरमान जी, और आपके रहते मुझे कभी भी कुछ हो भी नहीं सकता है, इसलिए आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और रही बात डाक विला को राख करने की, तो वो भी करेंगे, लेकिन सही वक्त आने पर, आस्था ने रहस्यमय अंदाज से कहा और फिर आगे बोली थी, क्या आपको ये नहीं पता आखिर मैं किसकी पत्नी हूं? क्या ये भूल गए आप? आस्था की बातें सुनते ही अरमान की आंखों में एक अजीब सा सुकून उतर आया। उसने आस्था को खुद में और कस लिया, जैसे वो उसे कभी खुद से दूर नहीं होने देगा। ठीक उसी वक्त आस्था ने अपनी आंखें बंद की और कुछ दिन पहले का मंजर उसकी आंखों के सामने घूम गया, जिस वक्त राजवीर ने अरमान की ऑफिस में जाकर अरमान को ड्रग्स दी थी ताकि अरमान संजना के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने पर मजबूर हो जाए और उस बेहोशी की हालत में संजना उसे अपने साथ रख सके और अपनी साजिश पूरी कर सके। लेकिन संजना के साथ इंटीमेट होने के बाद राजविंदर ने संजना को सख्त इंस्ट्रक्शन दिए थे कि जैसे ही तुम अरमान से अपना मतलब निकाल लो और उसके साथ जो चाहे वो कर लो, उसके बाद तुम्हें ये ड्रग्स उसकी बॉडी में इंजेक्ट करना होगा। अगर चाहे कुछ करो या ना करो, लेकिन तुम्हें ये ड्रग्स उसे हर हाल में देना ही होगा। राजवीर को पूरा का पूरा यकीन था कि जैसे ही संजना पूरी रात अरमान के साथ गुजारेगी, उसके बाद राजवीर का दिया हुआ वो रहस्यमयी ड्रग्स वो अरमान को दे देगी। अभी तो फिलहाल अरमान को जो ड्रग्स दिए गए थे वे केवल संजना के लिए दिए गए थे ताकि वो उसके साथ इंटीमेट हो सके, लेकिन जो ड्रग्स संजना के साथ एक्टिवेट होने के बाद अरमान को देने थे वे थे एक बार फिर से अरमान की यादें भुलाने के लिए। कहीं ना कहीं राजवीर ने सोचा था कि अगर एक बार अरमान संजना के साथ इंटीमेट हो जाएगा तो उसे खुद से नफरत हो जाएगी। राजवीर अरमान को इतना तो अच्छी तरह से समझता था, आखिरकार वो उसका चेला रह चुका था और अपनी बीवी के साथ तक जाकर प्यार करता था, ये बात उससे छुपी नहीं रही थी। लेकिन वक्त रहते ही अबीर ने संजना को अरमान को अपने फार्म हाउस पर ले जाते हुए देख लिया था और उसने जल्दी ही आस्था को इस बारे में बता दिया। आस्था जब वहां पहुंची तब तक संजना अरमान के साथ इंटीमेट नहीं हो पाई थी और वक्त रहते आस्था ने अरमान को बचा लिया था। वहीं संजना जितने भी बॉडीगार्ड थे सभी लोगों को मरा हुआ देखकर पूरी तरह से घबरा गई थी। उसने राजवीर से भी झूठ कह दिया था कि उसने राजवीर का दिया हुआ ड्रग्स अरमान को दे दिया था, लेकिन असल में उसने उसे कहीं फेंक दिया था, क्योंकि संजना बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि अगर राजवीर को यह पता चला कि उसने उसका दिया हुआ काम नहीं किया तो वो उसकी बेरहमी से जान ले लेता। इसलिए संजना ने जानबूझकर झूठ बोल दिया था कि आस्था के वहां आने से पहले उसने वो ड्रग्स अरमान को दे दिया था। उसे अभी तक इस बात के बारे में कोई अंदाजा नहीं था कि असल में वो ड्रग्स अरमान की भूली हुई यादें बरकरार रखने के लिए दिया जा रहा था। लेकिन उसी वक्त जब आस्था और अरमान एक दूसरे के करीब आए तब अरमान की दबी हुई यादें अचानक तेजी से लौटने लगी और उसी दौरान अरमान ने उसे आफत कहकर पुकारा था। ये सुनते ही आस्था की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, वो फूट फूट कर रो पड़ी थी। तब पूरी रात आस्था और अरमान एक दूसरे के साथ रहे और अपने प्यार में खोए रहे थे। अगली सुबह दोनों एक साथ जागे। अरमान ने मुस्कुराकर आस्था के माथे को चूमा और कहा था, कैसी हो आफत? एक पल के लिए आस्था चौंक सी गई थी। उसे लगा था कि जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक सपना है, लेकिन एक बार फिर अरमान के मुंह से वही आवाज सुनकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसकी आंखें एक बार फिर भर आई थी। तभी अरमान ने उसे गहरी नजरों से देखते हुए कहा था, क्या हुआ? पूरी बात बताओ आफत। मुझे बस इतना याद है कि मैं तुम्हें लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने वाला था, उसके बाद मेरी जिंदगी में क्या हुआ मैं तुमसे जानना चाहता हूँ। ये सुनकर आस्था के हैरान होने का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो समझ चुकी थी कि अरमान को केवल ऑस्ट्रेलिया जाने तक ही बातें याद है, इसके बाद की कोई भी याद उसके पास नहीं थी। ज्यादा देर न करते हुए आस्था ने अरमान को सारी बातों के बारे में बताना शुरू कर दिया था कि किस तरह सब कुछ बदला, किस तरह उसने सबके साथ बर्ताव किया, घर में कैसा माहौल हो गया था और सभी लड़कियों से वो किस तरह से बात करने लगा था। इतना ही नहीं, उसने ये भी बता दिया कि गुस्से में उसने कितनी कड़वी बातें कह दी थी। ये सारी बातें सुनकर अरमान ने अपने हाथों की मुठ्ठियां कसकर बंद कर ली और गुस्से भरी नजरों से आस्था को देखने लगा। फिर वो बोला था, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? ये कहते हुए उसने गुस्से में अपना मुक्का दीवार पर दे मारा और बोला, मुझे अपनी आफत को जाने अनजाने में भी चोट पहुँचाने का कोई हक नहीं है, मेरी यादें हों या ना हों, लेकिन मेरी आफत मेरी जिंदगी है, उसे चोट पहुंचाने का मुझे तो क्या किसी को भी अधिकार नहीं है। बोलते हुए अरमान लगातार खुद को कोस रहा था। तभी आस्था ने मजबूती से उसका हाथ थाम लिया, उसे संभाला और सारा सच बताते हुए कहा, ये वक्त खुद को सजा देने का नहीं है मिस्टर सिंघानिया, ये वक्त हमें मिलकर लड़ने का है। आप जानते भी हैं अभी क्या हालत है, अभी तो दीवारों के भी कान होते हैं, इसलिए अभी हम इस सिचुएशन के बारे में किसी से कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ एक बात और, अब हम मिलकर मुकाबला करेंगे। आप ठीक हो गए,
इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकती। हमारे कान्हा जी ने हमारी सुन ली। हम आपके बिना कितना तड़प रहे थे आप सोच भी नहीं सकते। ये कहते हुए आस्था की आंखें एक बार फिर भर आई थी। तब अरमान ने उसे अपने सीने से लगाकर बड़े ही प्यार से संभाला था और कहा था, मैं जानता हूँ कि मुझसे दूर रहने का हर पल तुम्हारे लिए कितना मुश्किल था। मेरे पागलपन को झेलने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया आफत। लेकिन अगर मेरे गुरु को ये लगता है कि इस तरह की हरकत करके वो अपनी मरी हुई बीवी का बदला ले सकता है तो ये उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। अब उसका सामना सीधे सीधे डेविल किंग से होगा और तुम वही करोगी जैसा मैं कहूंगा। उस रात दोनों ने मिलकर पूरा प्लान बनाया था कैसे राजवीर और सम्राट का अंत करना है। उधर मारिया ने डिजिटल तरीके का इस्तेमाल करते हुए पूरे डार्क वर्ल्ड सिस्टम को स्कैन किया। तभी उन्हें वहाँ प्रियंका के मौजूद होने का एहसास हुआ। प्रियंका को हर कुछ दिनों में एक इंजेक्शन दिया जाता था ताकि उसकी यादें मिटती रहे और वो खुद को राजवीर की मरी हुई पत्नी समझती रहे। लेकिन जिस दिन मारिया ने सीक्रेट सॉफ्टवेयर के जरिए सारी सच्चाई सुनी उसी वक्त राजवीर प्रियंका को फिर से इंजेक्शन लगा रहा था। प्रियंका जोर जोर से रोते हुए चीख रही थी, मेरा नाम प्रियंका है, मेरा नाम कोई कोमल नहीं है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारी कोई पत्नी नहीं हूँ, मैं यहाँ नहीं रहती, मुझे घर जाना है। उसकी ये चीखें सुनकर मारिया की आंखें हैरानी से फैल गई थी। उसने तुरंत ये बात अरमान को बताई। अरमान ने उसी समय बड़ा प्लान बनाया। उसने साफ कहा, सबसे पहली जिम्मेदारी प्रियंका की जान बचाना है। अगर एक बार भी राजवीर को हमारे प्लान की भनक लग गई तो वो बिना एक पल सोचे प्रियंका की जान ले लेगा। प्रियंका की पहचान कंफर्म करने के लिए आस्था ने अपनी नानी माँ को बहाने से मामा मामी के घर भेजा। वहाँ जाकर पता चला कि कई दिनों से प्रियंका का ना तो फोन लग रहा है और ना ही वैभव से उसकी कोई बात हो पा रही थी। जैसे ही ये बात कंफर्म हुई उन्होंने अपने प्लान पर तेजी से काम शुरू कर दिया।
लेकिन राजेश वाले की घटना के बाद जिस तरह राजेश अंश को मारने की कोशिश कर रहा था उसे देखकर आस्था पूरी तरह से टूट गई थी। उस वक्त अरमान उसे कमरे में ले गया, उसे संभाला और सख्ती से कहा, तुम इस तरह कमजोर नहीं पड़ सकती, तुम डेविल की क्वीन हो, डेविल क्वीन हो, और क्वीन को कमजोर पड़ने का कोई हक नहीं है। तब से लेकर अब तक आस्था चोरी छिपे अरमान से मिलती रही। वो सबके सामने अनजान बनने का नाटक करती रही लेकिन अंदर ही अंदर वही उसे सुकून और ताकत दे रहा था और इसी वजह से उन्होंने मिलकर इतना बड़ा खेल खेला और आखिरकार प्रियंका को बचा लिया। अब सब लड़कियां हैरानी से आस्था को देखने लगीं। रौनक शिकायत भरे लहजे में बोली, अगर तुम्हें पहले से ही अरमान की यादों के बारे में पता था तो तुमने हमें एक बार भी क्यों नहीं बताया? तुम जानती हो सम्राट के सामने हमें कैसी एक्टिंग करनी पड़ रही थी, हमें कितना अजीब लग रहा था। राधिका की बोली, आस्था तुम तो हमारी मास्टरमाइंड हो यार, कम से कम तुमने हमें भटकने तो नहीं दिया। लेकिन ये बात छुपाने की क्या जरूरत थी? तुमने हमें कहा कि प्रियंका को वहां से निकालना है लेकिन ये तो बता सकती थी कि अरमान भाई की यादें वापस आ चुकी हैं। प्रियंका के बारे में तो सब लड़कियों को पता चल चुका था लेकिन अरमान की यादों की सच्चाई से सब अनजान थे। सभी की आंखों में अब एक साथ हैरानी भी थी और हल्की सी शिकायत भी। फिलहाल अरमान ने बिना किसी की परवाह किए तुरंत आस्था को कसकर गले से लगा लिया और कहा, थैंक यू सो मच आफत मेरा साथ देने के लिए, सच में तुमसे ज्यादा ब्रेव कोई हो ही नहीं सकता। सबकी नजरें उन दोनों पर टिक गईं। आहान भी शर्माई नजरों से आस्था और अरमान को साथ देख रहा था और ध्रुव के घूरने पर वो थोड़ा सा पीछे हटकर खड़ा हो गया। तभी दादाजी ने गला साफ करते हुए कहा, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है, जैसे ही राजवीर को पता चलेगा कि प्रियंका वहां नहीं है वो क्या करेगा? वो सीधा हमारे घर पर चढ़ाई कर सकता है, उस सम्राट को भी आस्था बेटी के बारे में सब पता चल सकता है, अब क्या होगा? दादाजी ने सीधे अरमान की ओर देखते हुए कहा, अरमान तुमने और आस्था ने मिलकर प्रियंका को बचा लिया, ये हमारे परिवार की सबसे बड़ी जीत है। लेकिन याद रख, राजवीर शांत नहीं बैठेगा, हमने उसके घर में घुसकर उसे खुली चुनौती दी है। अरमान ने गर्दन घुमाकर दादाजी की ओर देखा, उसकी आंखों में अब राजवीर के लिए साफ साफ मौत का पैगाम था। उसे शांत बैठने का मौका मैं दूंगा ही नहीं, अभी तो सिर्फ प्रियंका वापस आई है, राजवीर का साम्राज्य गिरना अभी बाकी है। हॉल का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। यादाश्त वापस आने की खुशी थी, प्रियंका के सुरक्षित होने का सुकून था, लेकिन आने वाले तूफान की आहट भी सबको साफ सुनाई दे रही थी। अरमान की मौजूदगी ने सबको एक नई ताकत दे दी थी और अपनी बीवी के लिए उसका वो पागलपन, वो जुनून, वो आज भी वैसा ही था जैसा पहले दिन था। तभी अचानक उनके कानों में अंश के रोने की आवाज़ गूंज उठी। अंश, जो हौर में पड़े झूले में लेटा हुआ था, अचानक जोर जोर से रोने लगा। आहान फटाफट उसके पास पहुंचा, उसे गोद में उठा लिया और धीरे धीरे झुलाते हुए बोला, चुप हो जा, चुप हो जा, मेरी प्रिंसेस अभी सो रही है, अगर तेरी रोने की आवाज़ सुनकर वो जाग गई ना तो पता नहीं मेरे साथ क्या करेगी, प्लीज़ यार चुप हो जा। वो अंश को चुप कराने की कोशिश करने लगा लेकिन अंश की नज़रें इस वक्त सिर्फ अपने पिता पर टिकी हुई थीं। अरमान खुद को रोक नहीं पाया, वो आगे बढ़ा और तुरंत अंश को अपनी गोद में ले लिया, उसने उसे कसकर सीने से लगा लिया। एक पल के लिए पिता पुत्र का वो मिलन देखकर सबकी आंखों में अनकही सी नमी उतर आई। कई सवाल थे, कई दर्द थे, लेकिन उस पल सिर्फ सुकून था। आस्था भी तुरंत वहां आ गई और उसने अरमान व अंश दोनों को अपनी बाहों में भर लिया।
अरमान की यादें खोने का जो नाटक वो इतने दिनों से देख रही थी उससे वो अंदर ही अंदर बहुत घबरा गई थी। वो भला अरमान के बिना कैसे रह सकती थी। तभी वंशिका ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आप जानते हैं जब मैं प्रोफेसर का हालचाल लेने अस्पताल गई थी तब उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ी बात बताई। उन्होंने कहा था कि जो वायरस अरमान भाई को दिया गया है उसका सेकेंड डोज उसी तय समय सीमा के अंदर देना बहुत जरूरी है। अगर वो दूसरा डोज समय पर नहीं दिया गया तो उनकी यादें अपने आप वापस आ सकती हैं। सब चौंक कर वंशिका की ओर देखने लगे। वो आगे बोली, मेरे ख्याल से जिस रात राजवीर ने अरमान भाई को ड्रग्स दिया और संजना के साथ जबरन रिलेशन बनाने की कोशिश की उसी रात वो उन्हें दूसरा डोज देने वाला था, लेकिन लकीली उसी वक्त आस्था भाभी समय पर पहुंच गई और उन्होंने अरमान भाई को बचा लिया और शायद उसी पल उनकी यादें भी वापस आ गईं। जैसे ही वंशिका ने पूरा सच बताया सब गहरे सदमे में डूब गए। रौनक ने तुरंत सवाल किया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता, उस ड्रग्स और वायरस ने अरमान भाई की यादें पूरी तरह खत्म कर दी थीं, खासकर वो यादें जिनमें आस्था उनकी जिंदगी में आई थी। फिर राजवीर इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है? उसे भी तो पता होगा कि अगर वक्त पर इंजेक्शन नहीं दिया गया तो यादें वापस आ सकती हैं। वंशिका हल्के से मुस्कुराई और बोली, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो रौनक, लेकिन अभी तक राजवीर को यही लग रहा है कि ड्रग्स वाली रात संजना ने वो सेकेंड इंजेक्शन अरमान भाई को दे दिया था, क्योंकि ड्रग्स तो संजना ही देने वाली थी, लेकिन शायद उसने जानबूझकर खुद को राजवीर के शक से बचाने के लिए पूरा सच उसे नहीं बताया और इसी गलतफहमी का फायदा हमें मिल गया। हॉल में फिर एक गहरी खामोशी छा गई। अब ये साफ था खेल अभी खत्म नहीं हुआ था, बस असली जंग की शुरुआत होने वाली थी।